आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम अदिति है और हम पढ़ रहे हैं पाठ एक विकास। अभी तक हमने 3 ऑडियो लेक्चर में यही पाठ पढ़ा है और इस ऑडियो लेक्चर में हम यही पाठ 8वें पन्ने से पढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पाठ का 8वां पन्ना खोलें और जहां पे टॉपिक दिया है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, उस टॉपिक के नीचे दाएं साइड में आए। हम यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने यहाँ के बाई साइड को पढ़ा था और समझा था कि जब हम दो देशों के बीच तुलना करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा विकास कर रहा है, तो जो हम विशेषता लेते हैं उसमें से सबसे अहम है आय। आय देखना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिसके पास ज्यादा आय होता है वो ज्यादा रिसोर्सेस का यूज कर पाता है और ज्यादा तरक्की कर पाता है। तो आज हम आय के और दूसरे चीजों को देखें जिससे हमें समझ आएगा कि आय को हम कैसे यूज कर सकते हैं समझने के लिए कि कौन सा देश विकास कर रहा है। तो मैं पढ़ना शुरू करूंगी दूसरे पैराग्राफ से और समझाऊंगी कि इसका अर्थ क्या है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि देश की आय का मतलब क्या है। जो एक देश है जैसे कि भारत है, तो इस भारत का आय क्या होगा? हम ये तो जानते हैं कि एक व्यक्ति की आय होती है, तो एक देश की आय क्या होती है? तो यहाँ पे बताया गया है कि एक देश की जो आय होती है वहां के सभी निवासियों की आय है। यानी कि हर व्यक्ति जो उस देश का हिस्सा है, जो उस देश में रहता है, उन सभी की आय को जोड़कर देश की आय बनती है और उसे हम कहते हैं देश की आय, जिससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब हम दो देशों की तुलना करते हैं तो जो सबसे मेन, सबसे अहम जो विशेषता देखते हैं दोनों के विकास की, वो है आय। जिस देश की आय ज्यादा होती है वो देश ज्यादा तरक्की करता है, हम ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने समझा था कि जिस देश के पास ज्यादा आय होगी वो ज्यादा जगहों पर खर्चा कर सकेगा और उसके हर व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे होंगे। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बोला गया है, देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। इतना उपयुक्त माप नहीं है यानी कि अगर मान लीजिए एक देश है ए, दूसरा देश है बी, ठीक है, और देश ए जो है उसका इनकम है मान लीजिए 100 रुपए, देश का इनकम है, देश ए का इनकम 100 रुपए, और जो देश बी है उसका इनकम है 40 रुपए, ठीक है, मान लिया। अब ये देखना है कि दोनों में से तरक्की कौन कर रहा है, किसके पास ज्यादा विकास के साधन है। तो अगर हम ये सोचें कि जिस देश के पास ज्यादा आय है वो तरक्की कर रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि देश ए जो है वो देश बी से ज्यादा तरक्की कर रहा है, वो ज्यादा प्रगति कर रहा है। यानी कि हो जाएगा कि ए ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वो बेहतर है बी से। परंतु क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है, मैं कहूंगी कि इस लाइन को आप मार्क करें, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। तो यहां से क्या समझने को मिल रहा है कि एक देश के पास ज्यादा आय है, दूसरे के पास कम है। इससे हमें नहीं पता चल सकता कि कौन सा देश ज्यादा तरक्की कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की जनसंख्या अलग अलग है। मान लीजिए जो देश ए था, जिसकी इनकम थी, आय थी 100 रुपए, उसमें जो लोग रहते हैं वो है 10। देश ए में 10 लोग रह रहे हैं और उस देश की इनकम है 100। और एक देश बी है जिसकी इनकम थी 40 रुपए और वहां पे लोग कितने रह रहे हैं, मान लीजिए 2 लोग रह रहे हैं उस देश में, देश बी में। मैं चाहूंगी इसे आप लिखते जाएं, देश ए की इनकम 100, लोग रह रहे हैं 10, देश बी की इनकम आय जो है 40 और लोग रह रहे हैं 2। अब यहाँ पे एक बात कह गई है, औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। औसत व्यक्ति यानी कि हर आदमी कितना एवरेज कमा सकता है, यानी कि पूरे देश का हर व्यक्ति कितना लगभग कमा सकता है, ऐसा कितना आय होगा जो सबके पास होगा कि हाँ कि इतना तो हर व्यक्ति कमा रहा है, यह जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसके आगे पढ़ते हैं, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? तो जो औसत इनकम, औसत आय होती है, मतलब हर व्यक्ति की जो आय होती है, उससे यह पता चलता है कि हर व्यक्ति तरक्की कर रहा है कि नहीं, एक देश के लोग दूसरे देश से बेहतर हैं कि नहीं, इसीलिए हम औसत आय निकालते हैं। अब औसत आय कैसे निकालते हैं? तो जैसे मैंने बोला था लिखने के लिए कि 100 इनकम है देश ए की और लोग रह रहे हैं 10, तो हर आदमी कितना कमा रहा है औसत। तो कैसे निकालेंगे? 100 को 10 से भागा देंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमें हर व्यक्ति की आय पता चल जाएगी। 100 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया? 10 आएगा, क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो आएगा 10, यानी कि हर व्यक्ति देश ए में 10 रुपए कमा रहा है। और वहीं मान लीजिए देश बी है, जहां पे 40 रुपए इनकम है और लोग हैं वहां 2, तो वहां की औसत आय क्या होगी, यानी कि वहां पे हर व्यक्ति कितना कमा रहा है औसत। तो यहाँ पे हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 40 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 20। तो यानी कि हर व्यक्ति वहां पे 20 रुपए कमा रहा है। तो ये हो गया वहां का प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति मतलब हर इंसान, औसत यानी कि एवरेज, यानी कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है उस देश में। तो अगर हम ये सोच लेते कि जिसके पास ज्यादा आय है वो देश ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो हमें लगता कि देश ए तरक्की कर रहा है, जबकि वहां पे हर व्यक्ति सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है। इसीलिए हमें औसत आय की जरूरत है, ये देखने के लिए कि असलियत में कौन से देश के लोग तरक्की कर रहे हैं। एक देश तभी तरक्की करता है जब वहां के लोग तरक्की करते हैं। इसीलिए हम देश की आय के साथ औसत आय देखते हैं। तो जो यहां से हमें पता चल रहा है कि देश बी जो है वहां के लोग ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति 20 रुपए कमा रहा है, तो असलियत में देश बी ज्यादा प्रगति कर रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है। उसे समृद्ध देश और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल यूएस डॉलर 1,820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक जो है वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो पूरी दुनिया का बैंक है। जैसे हमारे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं देश में, वैसे ही ये बैंक है, ये पूरे विश्व का बैंक है वर्ल्ड बैंक। और ये हर साल रिपोर्ट निकालता है दुनिया के देश कितना प्रगति कर रहे हैं उसके लिए। तो उनका कहना है कि जो देशों का वर्गीकरण, देशों को क्लासिफाई किया जाता है, लिस्ट में डाला जाता है कि कौन सा देश कैसा है, किस हालात में है, उसमें डालने के लिए, उस लिस्ट को बनाने के लिए इस मापदंड जो है औसत आय, इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यूज किया जाता है, कैसे विश्व बैंक जो है क्लासिफाई करता है कि कौन सा देश किस लिस्ट में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए कि 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 12,056 प्रति वर्ष, यानी कि जिस देश की हर व्यक्ति की आय 12,056 डॉलर एक साल की हो या उससे अधिक हो, वो समृद्ध देश है। यानी कि 12,056 डॉलर रुपीस नहीं, रुपीस इंडिया का करेंसी है, डॉलर जो है वो अमेरिका का है, यूएस डॉलर अमेरिका का डॉलर। उस करेंसी में 12,056 जिस भी देश की प्रति व्यक्ति आय होगी, यानी कि जिस भी देश में हर व्यक्ति की आय इतनी होगी हर साल, वो देश समृद्ध होगा, या फिर इससे ज्यादा भी हो तो भी समृद्ध हो। वहीं अगर प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, यानी कि अगर कोई ऐसा देश है जहां पे हर व्यक्ति की आय एक साल की 995 यूएस डॉलर है, तो वो देश निम्न आय वाला देश कहा गया है। उसे विश्व बैंक जो है इस लिस्ट में डालती है, किस लिस्ट में, जो है निम्न आय वाला देश। जो हमारा देश है भारत, उसको मध्य वर्ग आय वर्ग के देशों में डाला गया था 2017 में, क्योंकि हमारा जो देश है वहां पे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की आय थी यूएस डॉलर 1,820। यानी कि 2017 में भारत में हर व्यक्ति औसत 1,820 यूएस डॉलर कमा रहा था एक साल में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन लिस्ट है, जो देश होते हैं पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, वो विश्व बैंक उन्हें तीन लिस्ट में डालता है। पहला हो गया जो कि है समृद्ध देश, फिर दूसरा हो गया मध्य आय वर्ग देश, फिर तीसरा हो गया निम्न आय वाला देश। निम्न आय सबसे कम, मतलब जहां पे बहुत ही कम इनकम है लोगों की औसत। अब यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखी है, समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो समृद्ध देश होते हैं उन्हें विकसित देश कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है डेवलप्ड नेशन। विकसित देश का मतलब है डेवलप्ड नेशन। जिस भी देश की औसत आय पर व्यक्ति एक साल की 12,056 से कम ज्यादा है या फिर उतनी है, तो उसे हम डेवलप्ड नेशन, विकसित देश बोलेंगे। और जो यहाँ पे लिखा है मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट के जो देश हैं और कुछ छोटे छोटे देश हैं, वो हमारे जो मिडल ईस्ट की जगह है वहां पे हैं, उन्हें इसमें नहीं जोड़ा जाता। अब हम पढ़ेंगे 9th पेज। यहाँ पे बॉक्स में टॉपिक दिया हुआ है औसत आय। तो जैसा कि अभी तक हमने समझा कि सिर्फ देशों की आय देखना जरूरी नहीं है, फिर हमने समझा अगर वो जरूरी नहीं है सिर्फ तो हम क्या देखें, तो उत्तर है औसत आय। औसत आय से हमें पता चलता है कि हर देश कितना तरक्की कर रहा है। पर अब यहाँ पे ये बताया गया है कि औसत आय भी बिल्कुल सही मापदंड नहीं है एक देश की प्रगति को बताने के लिए। कैसे, समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। यानी कि औसत आय जरूरी तो है कि हाँ, हम उसके द्वारा तुलना कर सकते हैं कि कौन सा देश ज्यादा तरक्की कर रहा है। जिस देश की औसत आय ज्यादा होगी वहां के लोग ज्यादा तरक्की करते हैं, परंतु इससे हमें जो देश है उसकी पूरी असली हालात नहीं पता चलते। यह असमानता यानी कि डिस्पैरिटी, जो भेदभाव हो रहा है अमीर गरीब के बेसिस पे, वो छुपा देता है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, हम उसे पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है तालिका 1.2, और यहाँ पे हम दो देशों की तुलना करेंगे, और वो दो देश है, एक है क और एक है ख। और लिखा हुआ है 2012 में नागरिकों की मासिक आय यानी कि एक महीने की आय रुपए में। तो यहाँ पे 5 लोगों की आय दी हुई है मासिक आय रुपए में, डॉलर में नहीं, रुपए में। तो जो देश क है वहां पे पहले व्यक्ति की आय है 9,500, दूसरे व्यक्ति की आय है 10,500, तीसरे व्यक्ति की आय है 9,800, चौथे व्यक्ति की आय है 10,000 और पांचवें व्यक्ति की आय है 10,200। और वहीं दूसरे देश की, देश ख में, पहले व्यक्ति की आय है 500, दूसरे व्यक्ति की भी आय है 500, तीसरे और चौथे व्यक्ति की भी आय है 500, पर पांचवें व्यक्ति की आय है 48,000, 48,000। तो ये हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए हुए हैं, 5 लोगों की मासिक आय दी हुई है। अब इससे हमें समझना है कि कौन सा देश ज्यादा तरक्की कर रहा है, किस देश में समानता ज्यादा है और किस देश में असमानता ज्यादा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे, क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न है कि आप खुद सोचे कि आप कौन से देश में रहना चाहेंगे, आप कौन से देश में रहकर समान रूप से, मतलब कहाँ पे आपको ज्यादा खुशी होगी, क्या दोनों जगह समान रूप से सुखी होंगे आप, क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं। उत्तर है नहीं, पर कैसे, समझते हैं। शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे। यानी कि अगर हमें देश ख का 5वां नागरिक बना दिया जाए जिसकी मासिक आय है 48,000, तो हम सभी खुश होंगे कि अगर हमें बोल दिया जाए कि हाँ तुम 5वें व्यक्ति होगे, तो हम सभी चाहेंगे कि हम उस देश में रहे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम में से ज्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। यानी कि अगर हमें आश्वासन ना मिले, कोई हमें प्रॉमिस ना करे कि हम देश ख के 5वें व्यक्ति होंगे, और हमें बोला जाए कि तुम किस देश के व्यक्ति होगे और कौन से व्यक्ति होगे ये लॉटरी के द्वारा निश्चित किया जाएगा, यानी रैंडमली एकदम से किसी भी तरीके से बता दिया जाएगा कि तुम कौन से व्यक्ति होगे। तो हम में से ज्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। क्यों? यहाँ पे हम रहना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग ना तो बहुत अमीर है ना बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज्यादा नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि हम देश क में क्यों रहना पसंद करेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, थोड़ा गणित करें कि यहाँ पे दोनों देशों की औसत आय कितनी है। तो आपको पता चलेगा कि दोनों देश की जो औसत आय है वो बराबर है। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी है, देश क के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नागरिक के हम आय को जोड़ेंगे जिससे हमें देश की इनकम पता चलेगी। जहां तक आपको याद होगा कि देश का जो आय होता है वो होता है सभी नागरिक निवासियों की आय को जोड़कर जो आय आता है। तो यहाँ पे जब हम 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 और 10,200, तो इन्हें जोड़ने पर जो देश की आय आएगी वो है 50,000। इन सभी को जोड़ने पे जो अंक आ रहा है वो है 50,000। और अब इस देश की इनकम से, देश की आय से हम निकालेंगे औसत आय, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, वो तो आएगा 10,000। 10,000 औसत आय आएगा। तो मैं चाहूंगी कि जो यहाँ पे जो बॉक्स है जो खाली है औसत का, वहां पे देश क के आगे आप लिखें औसत आय 10,000। वही देश ख का जो देश का इनकम है, देश की आय है, वो होगी 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 48,000। और इनको जोड़ने पे जो देश की इनकम आएगी, देश की आय आएगी, वो है 50,000। और इसको भी जब हम 50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो हमें आएगी देश ख की औसत आय, हर व्यक्ति की आय, तो वो भी आएगी 10,000। तो वो जो वहां पे खाली बॉक्स है औसत का, देश ख के आगे भी 10,000 लिखो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश क और देश ख दोनों की जो औसत आय है वो है 10,000। मतलब औसत आय हो गया हर व्यक्ति का आय 10,000। पर एक डिफरेंस देखिए, अंतर है कि देश क में जो बाकी लोगों की जो आय है, जो असली आय है लोगों की, पहले पर्सन की, दूसरे पर्सन की, तीसरे और चौथे पांचवे की, सबकी 10,000 के पास में है। पहले की जो है वो 9,500 है, 10,000 से सिर्फ 500 कम है। दूसरे की 10,000 से सिर्फ 500 ज्यादा है। तीसरे की 10,000 से सिर्फ 200 कम है। चौथे की 10,000 है और पांचवे की 10,000 से सिर्फ 200 ज्यादा है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि इस देश का जो औसत है, औसत यानी एवरेज वैल्यू है, वो है 10,000, और जो बाकी लोग हैं उनकी जो आय है वो उस वैल्यू के आसपास है, यानी कि ज्यादा अंतर नहीं है उस देश में। हर व्यक्ति औसत आय के लगभग कमा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 100 कमा रहा है तो कोई 10,000 कमा रहा है। और वही देश ख है, वहां पे 4 व्यक्ति 500 कमा रहे हैं और एक व्यक्ति 48,000, अकेला एक व्यक्ति 48,000 कमा रहा है। तो इस देश में आप देख सकते हैं कितना भेदभाव और अंतर है, 500 से सीधा 48,000। यहाँ पे किसी की भी आय 10,000 के जो औसत वैल्यू आई थी 10,000 उसके आसपास नहीं है। तो इस देश में भेदभाव ज्यादा है और असमानता ज्यादा है। तो इससे हमें यह पता चला कि औसत आय जरूरी तो है जानने के लिए कि कौन सा देश तरक्की कर रहा है, पर इससे हमें ये नहीं पता चलता कि समाज में कितनी समानताएं हैं और असमानताएं हैं। देश क में ना तो कोई बहुत ज्यादा अमीर है ना ही कोई बहुत ज्यादा गरीब है, जबकि देश ख में सारा का सारा जो पैसा है ज्यादातर पैसा पांचवें व्यक्ति के पास है। यहाँ पे या तो लोग बहुत गरीब हैं या तो एक व्यक्ति बहुत ही अमीर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि देश ख में असमानता ज्यादा है। इसीलिए यद्यपि औसताय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है, कि लोगों में पैसा किस तरीके से बट रहा है। अब इसी बॉक्स के नीचे दो चित्र दिए गए हैं और इससे यह समझाया जा रहा है कि समाज में एक समाज है जहां पे समानता है और दूसरा समाज है जहां पे असमानता है। तो कैसे हम समझते हैं, तो यहाँ पे जो बाएं साइड चित्र है जहां पे नीले कलर का बैकग्राउंड है, इसमें लिखा है गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, यानी कि ना ही कोई गरीब है ना ही कोई अमीर है, सब बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कुर्सियों को बनाया और तथा उनका उपयोग करते हैं। तो ये ऐसे समाज को दर्शा रहा है जहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं उनको उनके हिसाब से पैसे मिलते हैं, उनकी मेहनत के हिसाब से। यहाँ पे पांच लोग हैं, पांचों ने कुर्सियां बनाई और वो चारों कुर्सियों पे बराबर से बैठे हैं, यानी कि किसी को ज्यादा जगह तो किसी को कम जगह नहीं मिल रही, जितना भी है सब में बराबर से बटा है। तो ये कैसा देश है, देश क के जैसा देश है जहाँ पे औसत के बराबर का फायदा सबको मिल रहा है। यहीं पर जो दाईं ओर चित्र दिया हुआ है उसमें लिखा है गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश, यानी कि ऐसा देश जहाँ पे या तो अमीर है या तो गरीब है। तो इस चित्र में देखिए क्या लिखा है और क्या दिखाया गया है। चार कुर्सियां हैं और उसपे एक व्यक्ति लेटा है और दो कुर्सियां हैं उसपे चार व्यक्ति बैठे हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है, इससे यह दिख रहा है कि जो समाज में रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स यहाँ पे क्या है, पैसा, पैसा बराबरी से नहीं बटा, यानी कि जिन्होंने मेहनत की इन लोगों ने, जो चार लोग दो कुर्सी पे बैठे हैं वो कह रहे हैं हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया, यानी कि मेहनत तो इन्होंने की परंतु जो पैसा उन्होंने कमाने में मदद की वो पैसे एक व्यक्ति के पास चले गए। तो इस समाज में पैसे जो इनकम है आय है वो बराबरी से नहीं बट रहा, यहाँ पे भेदभाव। अब हम चलते हैं अगले पन्ने की ओर। यहाँ पे टॉपिक दिया है आय और अन्य मापदंड। तो यहाँ का पहला पैराग्राफ है जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था दूसरे या तीसरे ऑडियो में कि हम अपने बारे में जब भी सोचते हैं कि हम विकास कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आय के बारे में नहीं सोचते, हम अपने दूसरे दोस्तों के बारे में सोचते हैं, समाज में आदर के बारे में सोचते हैं, हम समानता चाहते हैं। ये सारी चीजें हमें चाहिए एक समाज में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरह देश में भी सिर्फ आय नहीं, देश के अलग अलग और भी ऐसे मापदंडों को देखते हैं जिससे देश की प्रगति के बारे में पता चले। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं? इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे पीछे। तो यहाँ पे एक नीले रंग का बॉक्स दिया हुआ है, टेबल है, और इसमें हरियाणा, केरल और बिहार का आय दिया हुआ है 2015-16 के लिए, और लिखा है प्रति व्यक्ति आय है रुपयों में। तो जो हरियाणा की आय है वो है 1,62,034, केरल की है 1,40,190 और बिहार की है 31,454। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हरियाणा की आय है और सबसे कम बिहार की प्रति व्यक्ति आय। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पे पैराग्राफ में उसी के नीचे लिखा है, इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपए कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 31,454 रुपए कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि जिस देश की, जिस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा है, वो ज्यादा प्रगति करेगा। तो हरियाणा ज्यादा प्रगति कर रहा है, और वहीं पे बिहार में जब वो व्यक्ति जाता है तो वो कम कमाता है, तो उस स्टेट की, उस राज्य की जो होती है तरक्की, वो कम होती है। और यहाँ पे मैंने एक शब्द पढ़ा था, यहाँ पे निवल राज्य घरेलू उत्पाद, इस शब्द के बारे का जो अर्थ है वो सोचने की उतनी टेंशन मत करें, क्योंकि ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने प्रति व्यक्ति आय तो पढ़ लिया, अब हम आगे चलते हैं कि आय के अलावा, प्रति व्यक्ति आय के अलावा और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम, एक दो स्टेट्स में क्या कंपेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तालिका 1.4। तो इन आंकड़ों को समझने से पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जो जरूरी हैं समझने के लिए कि क्या आंकड़े दिए हुए हैं। तो मैं चाहूंगी आप यहाँ पे पढ़ें इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या वहां से। तो पहला है शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। यानी कि किसी एक साल में, मान लीजिए 2020 में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे, 1,000 बच्चे जीवित हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले मर गए, यानी कि अगर 1,000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने एक साल की उम्र से पहले ही मर गए। तो दूसरा शब्द है साक्षरता दर। साक्षरता दर है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। हम साक्षर उसको कहते हैं जो किसी भी एक भाषा में पढ़ और लिख सके। तो यहाँ पे लिखा है कि 7 वर्ष या उससे अधिक की आयु के कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं किसी एक भाषा में, उन्हें हम साक्षर कहते हैं और उनकी परसेंटेज साक्षरता दर कहलाती है। तीसरा है निवल उपस्थिति अनुपात। तो इसका अर्थ है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। इसका अर्थ ये है कि 14-15 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं एक देश में या फिर एक गांव में या फिर एक शहर में या फिर एक राज्य में, तो उन सभी में से कितने बच्चे, उन सबका कितना प्रतिशत जो है वो स्कूल जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि इनका क्या मतलब है, ये जो शब्द उपयोग किए गए हैं। अब हम देखते हैं हरियाणा, केरल और बिहार में इन सभी की कितनी जो है परसेंटेज है, क्या आंकड़े हैं। तो शिशु मृत्यु दर प्रति हजार व्यक्ति 2016 में हरियाणा में 33, केरल में 10 और बिहार में 38, यानी कि सबसे ज्यादा जो बच्चे मरे हैं हजार में से एक साल के जो कम है वो है बिहार के। उसके बाद है साक्षरता दर का प्रतिशत 2011 का, जिसमें हरियाणा का है 82%, केरल का है 94% और बिहार का है 62%। तो सबसे ज्यादा है केरल का और सबसे कम है वो है बिहार। उसके बाद है निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष 2013 से 14 का यहाँ पे हमें आंकड़ा दिया गया है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं 14 से 15 वर्ष के, और हर 100 व्यक्ति मतलब हर 100 14 से 15 वर्ष के बच्चों में से कितने लोग जाते हैं। हरियाणा में 61, केरल में 83 और बिहार में 43। सबसे ज्यादा जाते हैं केरल में और सबसे कम जो जाते हैं वो है बिहार में। तो अभी तक हमने देखा कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए गए हैं इनका अर्थ क्या है और ये क्या दर्शाते हैं। अगले ऑडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनके जो अलग अलग आंकड़े हैं वो उन स्टेट्स के बारे में क्या दर्शाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप इस ऑडियो लेक्चर को सुनने के बाद जो 9th पेज पे प्रश्न दिए गए हैं आओ इन पर विचार करें के बॉक्स में वो सॉल्व करें और उनके उत्तर ढूंढें। अगले ऑडियो लेक्चर में हम इनके उत्तर डिस्कस करेंगे और आगे पढ़ेंगे अगले पन्ने से।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।